Godlywood Studios presents ब्रह्मकुमारीज पॉडकास्ट। बोल अनमोल दादी प्रकाश मणि जी के साथ।
अपनी जीवन उस टाइम पे स्कूल की लाइफ थी, ये भी नहीं पूछा कि स्कूल पर आगे पढ़ाई करनी है या छोड़नी है। नहीं छोड़नी है, अच्छा छोड़ देते। ये भी नहीं कहता कि लौकिक से पूछो, नहीं, हाँ बस तुम्हें ये करना है, हाँ हो जाए। पापा कहा और हो जाता था। हम भी कैसे कहूँ, क्यों पूछे। हमने तो देखा जब भी जो बाबा ने कहा वो हो जाता था, न कभी पूछता था कि ये करेंगी, नहीं, हमारे अनुभव में करेंगी कभी बाबा पूछा ही नहीं। ये करना है, हर टाइम हमारे सामने एक ही अनुभव है, बाबा ऑर्डर करता था बोर्डिंग में आके रहना है। हाँ, ये बोर्डिंग में इतना साल बजाना है, हाँ, हैदराबाद से कराची में आना है, हाँ, खुश, बस बाबा कहता था और हो जाता था। अरे बड़ी युक्ति से हमारे को हैदराबाद से कराची में मंगाया, शायद कभी कहानी वो सुनी हो। हम लोग तो छोटे छोटे बच्चों के साथ बोर्डिंग में थी हैदराबाद में, तो एक दिन कहा एक मास के लिए सब बच्चों को लेकर के घुमाने कराची में आओ। हमें क्या पता कि उसके लिए बाबा क्या प्रबंध करेगा, वो बाबा जाने, हमें क्या। अच्छा, हम सब अपना स्कूल लेके पहुंच गए। हमारे साथ में, मैं नहीं समझती हूँ गुलजार बहन तो उस टाइम थी कोई, हमारी भी कोई उम्र भरी नहीं थी, हमें भी पता नहीं। कहते हैं कि तुम इनों को पढ़ाने वाली टीचर हो, पर मेरी उम्र कितनी थी, मेरी उम्र तो 15 ही बरस थी कि मैं कोई बड़ी थोड़ी थी, लेकिन 15 बरस वाली संभालती थी 10 वर्ष वालों को, हमें क्या पता है कैसे संभाला जाता। लेकिन पालना भी सिखाई तो संभालना भी सिखाया, पढ़ाना भी सिखाया, सब कुछ गाइड करता था, और ऐसा गाइड करता था जैसे कि हम परे पढ़ाए था, ये भी नहीं लगता था कैसा। तो हमारे को तो सब ऐसे लगते हैं, वो आती है ना कि वो खुद जेल के द्वारे खुल गए, पढ़ा दिया, इशारा दे दिया, हाँ समझ लिए, पढ़ लिए, ये करना है, ये हाँ होना है, सब कुछ हुए परे है। वो चरित्र हम प्रैक्टिकल देखते थे, क्यों इतना जरूर था। खैर मैं ध्यान में नहीं गई, परंतु हाँ साक्षात्कार जरूर करती थी, इनों की तरह गुम नहीं हो जाती थी, परंतु हाँ मैं अनेक बाबा साक्षात्कार जरूर कराता था। कई समय तक मेरा अनुभव ये है, मैं कभी बाबा को बाबा देखा ही नहीं। जब जाऊं सामने, मेरे सामने श्री कृष्ण के सिवाय कभी मैं दादा देखती ही नहीं थी। कई समय तक मैं बात कर रही हूँ, बाबा मुझे बाबा डायरेक्शन दे रहा है, मुझे बाबा ये करा रहा है, बताया नहीं सारी बोर्डिंग सारा सब कुछ था, वो भरी हिस्ट्री सब कुछ तैयारी कराई, पर मैं बाबा को जब सामने देखूंगी तो मैं कभी कृष्ण के सिवाय का बाबा देखती ही नहीं थी कई समय तक। अब बताओ जो सामने देख ही रहा है श्री कृष्ण, उनके उनकी जीवन का आगे क्या सब कुछ होगा उनसे आप समझ सकते। अब मेरे सामने श्री कृष्ण है और वो कह रहा है तुम ये करो वो करो, मैं ज्ञान भी उनसे सुन रही हूँ, डायरेक्शन भी उनसे ले रही हूँ, तो मैंने तो बाबा को दादा रूप में देखा ही नहीं कितने समय, जबकि काम मैं कोई ध्यान में नहीं थी, पहले मैं जानती भी नहीं थी। बड़े आपस में जानते हैं हम लोग छोटे, तो लाल जी का जो बाबा मिसाल देते हैं, भाई सत्संग एक होता है, पर कौन है क्या है नहीं जानते। तो कहने का मतलब कि बताया कि मैं समझती हूँ कि ऐसी स्थिति में मैं करीब साल डेढ़ साल होंगी कि मैं कभी आंखों से बाबा को कृष्ण के सिवा कभी देखा हो। जब सामने आऊंगी वही बोलता है, वही देखता है, वही कह रहा है, उनका ही सब सुन रही हूँ, और हम जैसे मस्तानी गोपियां होती है वैसे ही और घर में आओ न कहा, न खाने की सुधबू, न कुछ नहीं, न नींद भी होती थी। खैर तो बाबा ने ही हमें उसी स्थापना के लिए आदि आदि में बोर्डिंग में निमित्त बनाया और वहां से कराची बुलाया। और जहां तक मेरा अनुभव है, शायद मेरे साथी भी सब जानते होंगे, सबको हरे को अपना अपना बहुत विशेष वरदान है, इसमें कोई शक नहीं, पर हम तो अपने को लकी में लकी जानती, वरदानों से वरदानी जानती। इसलिए कोई मेरे से पूछे कि दादी तुमने किस बात की कभी मेहनत की, मेरे पास कोई मिसाल ही नहीं है कि मैंने कभी मेहनत किया। मेरे पास में उसी बात का कोई अनुभव ही नहीं कि मैंने कोई मेहनत की होगी। क्यों? सदा बाबा ने वरदान से हमारे को पार रखा और हम सदैव यह रहती थी जो बाबा कहे, जैसे बाबा कहे। और बाबा के जो महावाक्य जब भी निकले वे सब होते थे। कराची में रहे तो मुझे याद है, ये तो वो हिस्ट्री तो आप लोग बहुत सुनते हैं कि यज्ञ में रहते थे, क्या दिनचर्या, क्या ध्यान दीदार, कितना सब चलता था। बाबा हमेशा कहता था तुम्हें क्लास कराना है, सबको पता है। अरे मैं क्या टीचर, मैं क्यों टीचर बन करके सब क्लास कराऊं, मेरे से सब बड़े अच्छे नहीं। ये जा करके बाबा डिस्कोर्स देता था, जाके तुम्हें सुनाना है, तुम्हें ये पढ़ाना है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें। सदैव बाबा ने एक सेवा की ड्यूटी और देते रखी कि तुम्हें ये कार्य में आगे रहना है। और मोस्टली दीदी तो हमारे आदि से ही, जहाँ तक मुझे ख्याल है, आदि से ही हम दोनों आत्माओं का भी पता नहीं क्या वो ममता थी या बाबा ने ममता रखाई, दोनों का हर कार्य में साथ होता था। वो कंट्रोलर भी होती थी और हमें भी, हम दोनों इतना सारे यज्ञ का भी कई कार्य रखते थे, लेकिन हाँ होते भी। वो अलग मकान में रहती थी बंगले पर, हम अलग बंगले में रहते थे। हम सब कन्याएं एक बंगले में रहते थे और दूसरे थोड़े प्रवृत्ति वाले दूसरे में रहते थे। दादी जानकी मैं समझती हूँ तो अलग रहती थी, दीदी दूसरे बंगले में रहती थी। और सारा ही जिसको यज्ञ की रुद्र यज्ञ की स्थापना का कहो, वो यज्ञ जिसका नाम है कुंज भवन, वो था हम कन्याओं का। और जहाँ तक मुझे नंबर याद है, 101 कन्याएं हम एक साथ रहती थी, 101 कन्याएं थी हम उस टाइम कुंज भवन में। और थोड़ी बहुत बाकी बहने थी और सारे यज्ञ का जो भी कार्य व्यवहार था वो उसी कुंज भवन से होता था और उसी कार्य में सदा बाबा आगे रखता था, चलाना सिखाना सब कुछ। बाबा कहता था ये लेख लिखो, हमें क्या अकल लेख लिखने का। बाबा कुछ लिख के देता था, कहता था इसको छपाना है, इसको करेक्ट करो, हमें क्या पता है करेक्शन क्या होती है, हम कोई पढ़ी लिखी क्या। लेकिन जो पढ़ी लिखी तो बाबा वो सब भेज देता था और हम बैठ करके वो लेख लिखते थे, जो आता था जितना आता था। कभी कहेगा लिटरेचर लिखो, कभी कहेगा लेख लिखो, कभी कहेगा भाषण लिखो, कभी कहेगा करेक्शन करो। और बाबा बड़ी अच्छी सहज युक्ति, हम सबको भाषण सिखाने की होती थी, बाबा कुछ न कुछ पांच लिख के भेज देता था, कहेगा आज ये क्लास में तुम वाणी चलाओ। और हम ऐसा ही, बाबा ने हमें लिख लिख के देके और हमारा मुख चलाया और हमें भाषण जो भी तोतली भाषा में आता था सब बोल देते थे। आधी हिंदी आती थी, आधी हिंदी बोलने भी नहीं आती थी, फिर भी सिखा दिया, सिखा सिखा के आज बाबा ने ये। बीच में एक और दूसरी बात मंदिर को सुनाऊं, आप लोग ने सुना है कि हम लोग का बेगरी पाठ हुआ। बाबा कहते थे कि बच्चे समय आएगा तुम लोग को देश विदेश में भी जाना पड़ेगा। तो एक दिन हम कलकत्ता में थी, कैसे पहुंची, हर एक बात का लंबा सार है। हम कलकत्ता में थी, अभी नया नया निमंत्रण मिला था, पहला पहला कुंभ का मेला मेरा ख्याल 50 इलाहाबाद में 54 का मेला था। तो वहाँ मेले के बाद में हम गई कलकत्ता, निमंत्रण मिला था एक 15-20 दिन के लिए, कोई मारवाड़ी ने निमंत्रण दिया था। तो हम वहाँ निमंत्रण पर गई थी और हमें पता था यहाँ तो हम थोड़ा ही दिन है और टेम्पररी थोड़ा कुछ सर्विस जहाँ तक यथाशक्ति कर रहे थे। तो उसी में एक ऐसा भी स्टूडेंट आता था जिसका थोड़ा वो था, वो जैसे एजेंट होते हैं ना विदेश का, वैसे ही। तो बाबा ने अचानक एक पार्टी थी जिनको निमंत्रण मिला, दीदी गंगे बहन आदि, उनसे पहले निमंत्रण मिला हरिद्वार में कोई ये स्वामी शिवानंद के तरफ से कोई कॉन्फ्रेंस थी, उसमें निमंत्रण मिला। अच्छा, बाबा ने किसी को कहा निमंत्रण मिले, गए और वहाँ भाषण दिया। तो अब बाबा की ये तो महावाक्य आदि रहते थे कि बच्चे तुम्हारे ही बाणों से इनों का भी कल्याण होगा, परंतु उस टाइम का हमारा भाषण नशा अपना अपना था, धीरे धीरे अपने को उस बातों की भी अनुभव प्रैक्टिस होती गई है। तो वहाँ उस भाषण से फिर ये निमंत्रण मिला कि एक जापान में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस। तो उसी में निमंत्रण मिला कि कोई एक आ सकती है, कोई वहाँ के ही, कोई किसी ने साधु ने दिया। अब मैं कलकत्ता हूँ तो वो निमंत्रण बाबा के पास पहुँचा, मुझे पता नहीं। तो बाबा ने मुझे कलकत्ते में लिखा कि तुम्हें जापान जाना है, मेरा तो वहाँ ही गुम हो गया, मैं जापान में क्यों जाऊंगी। तो खैर पहले चिट्ठी आई कि आप जल्दी पासपोर्ट तैयार करो, तेरे को जापान जाना है और वहाँ वर्ल्ड रिलीजियस कॉन्फ्रेंस से निमंत्रण है और तुम्हें वहाँ भाषण करना है। अरे मैं कोई इंग्लिश जानती हूँ और जापान में है, पहले तो मेरी टांगे ही हिलने लगी सुनते ही। तो बाबा देखो कार्य कराता, तो वो एक अभी नया नया कोई आया था, तो पता नहीं उनसे कैसे मैंने बात की कि बाबा कहता है कि तुम्हें पासपोर्ट तैयार करना है, जापान जाना है, क्या होगा थोड़ी जरूर। बाबा कहा बस इतनी बात ही, पर मेरे दिमाग में तो कुछ आवे नहीं और कोई दूसरे भी थे नहीं, कोई हमारे साथ में अभी नई नई हम वहाँ पर गई थी। तो उसने कहा बिल्कुल ठीक है, मेरे को नाम दियो, मैं तुमको तुरंत पासपोर्ट देता हूँ, सब कुछ निकाल के देता हूँ। क्या ये बस, वो मेरे से सब सही करा के कागज लेकर के चले गए और कहा तो पासपोर्ट में हम तुमको सब लिख करके देते हैं और तैयार होता है और तुम तैयारी करो। अच्छा तैयारी करूं, फिर टिकट, ये तो मेरे को समझ में नहीं है टिकट कहाँ से लाएंगे हम, और मुझे ये पता है कि बिल्कुल बेगरी बात है, बाबा ने कहा है तुम्हें जापान जाना है, भाई पूछा टिकट कितनी, तो पता नहीं मुझे उस टाइम में बताया कि स्टीमर से जाएंगे, प्लेन से। अच्छा तो कहा तो हम कोशिश करते हैं कि आपको बिल्कुल कंसेशन की टिकट मिले क्योंकि रिलीजियस है, तो वो भी बहुत पुरुषार्थ किया। तो मुझे जहाँ तक याद है कि उसी टाइम में टिकट थी शायद 3000 रुपए की, उसी टाइम का रुपया 3000, और हमें मिली 1100 में। अच्छा 1100 की भी मिली, बताया तो सही, लेकिन कौन जाएगा दूसरा कौन। तो हमने तुरंत बाबा को लिखा, बाबा आपने लिखा है कि जापान जाएंगे, जो आ गया तो मैं कैसे जाऊंगी बाबा, थोड़ा थोड़ा घबरा के तो लिखा, आपने लिखा है तो ठीक है, अच्छा मैं रूबरू आ रही हूँ। तो इसी बीच में मैंने उनको पासपोर्ट वगैरह दिया, तो उसने सब कुछ तैयारी की और मुझे 3 दिन में कहा सब मिल जाएगा, अब आप बताओ किस तारीख। तो उसी पासपोर्ट में उनकी कॉन्फ्रेंस तो जल्दी ही थी, तो मैंने कहा अच्छा मैं पहले अबू तो होके आऊँ, मैं फिर ये तारीख में जाना पड़ेगा, आप तैयारी करो। पर बस जैसे कोई बाबा नहीं कोई उंगली से पकड़ के सब कुछ कराता जाता, हाँ तुम तैयारी करो, हम ये करेंगे, सब कुछ हो गया और मैं बाबा के पास आई। इसी बीच में बाबा ने उधर से हमारी रतनमणी को भी प्यार किया कि तुम्हें भी जापान जाना है। वो आके कलकत्ता पहुंची। दादी तुम कैसे पहुंच गई? बाबा ने कहा तुम्हें भी कलकत्ता जापान में जाना है। आखिर ये अभी भी नहीं, बाबा चिट्ठी में लिखा कि हमें चिट्ठी कहाँ से मिलेगी। लेकिन बाबा के पास में देखो ये भी एक ड्रामा, ये भी बाबा को नहीं तो टिकट कहाँ से आएंगी। बाबा को तो बस बाबा ने प्रेरणा दे दिया जरूर कोई हो जाएगा। ऐसे ही मैं कहूंगी कि जैसे नहीं कोई हो जाएगा था तो बिल्कुल बेगरी पास। हमारे पास कलकत्ता में तो कोई ऐसा पैसा वैसा नहीं था। खैर हो जाएगा, बस बाबा ने कहा है हो जाएगा। सच पच गुप्त एक बाबा का ऐसा बच्चा था, उसने कहा हम तीन की टिकट देते आप तीन जाओ। ये भी एक वंदन है।